18,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जब ये फौजी वहां खड़े हुए हैं तो वहां इनके साथ ऑफिसर्स भी खड़े हुए हैं। तो पांचों उंगलियां ना तो सिविलियन में बराबर है ना पांचों उंगलियां फौज में बराबर है, मगर फौज ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां बहुत दी। उन्होंने आज मेरी ठीक ठाक क्लास कल मेरी ठीक ठाक क्लास दी। उन्होंने कहा कि अभी भी जब दहशतगर्दी शुरू हुई है तो किन के लोग शहीद हो रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं, बुरे लोग हैं, पॉलिटिशियंस को आप ब्लेम नहीं करते, लोग इलेक्ट करते वक्त एहतियात करें कि वो किन को इलेक्ट करें, मगर हमारा अलमिया। अच्छा, वहां पे उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी की कि फिर लोग मिसाल देते हैं कि इंडिया के जनरल्स के बारे में किसी को नहीं पता, पाकिस्तान के वो कहता जी पाकिस्तानी तो हर वक्त खुद बुदबई लगे रहते हैं कि कौन सा जनरल कहाँ पे है, कि वो अपने आप को अनाउंस करें ना करें, आम अवाम उनके पीछे जो है ना वो ज्यादा लग के अपनी आर्मी को नुकसान पहुंचा रही है और वो अपने घर को आग लगा रहे हैं।
जी बिल्कुल, मैं तो 18,000 फीट की बुलंदी पर जाने की जरूरत नहीं, आप सी लेवल पे ही देख लें कि अगर ये फौज ना हो तो हम में और सोमालिया में ज्यादा फर्क बाकी नहीं रहेगा। ये जो फर्क नजर आ रहा है आपको वो सिर्फ इस वजह से कि फौज भी है और पुलिस भी है। ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये इस्लामाबाद के धमाके से जो भी हुआ कुछ 4 घंटे पहले, मैंने कुछ एनालिसिस कर रहा था रात का वक्त था यहाँ पर 1:30 बजे, तो मैंने डेटा चेक कर रहा था ये टेररिज्म का, तो मैंने 4 घंटे पहले सिर्फ ट्वीट में अपने वो 400 ग्राफ्स डाले कि मैं कहा देखो ये बहुत बढ़ रहे हैं और ये टेररिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और ये वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये अब शहरों में आए, ये लिखा ही था। तो 4 घंटे के बाद देखा तो वो इस्लामाबाद में धमाका हुआ और देखे उसमें बिल्कुल जिस आपने कहा ना जो ज्यादा कैजुअलिटीज हैं इस वक्त वो सिविलियंस की नहीं है, वो
आर्मी ऑफिसर्स की और
सिक्योरिटी पर्सनल जिसमें ज्यादातर फौज के जवान हैं और पुलिस के लोग हैं। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क की पुलिस और फौज अगर ना खड़ी हो इस मुल्क के साथ तो हमारा सोमालिया और अफगानिस्तान से बदतर।
आप दूर क्यों जाते डॉक्टर साहब, सीरिया में भी आर्मी को डिफेम करके क्या मिल गया उनको? और ये होता ये है कि अगर मैं वी रन अ बिजनेस, मैंने पाकिस्तान में भी काम किया, आप अगर किसी बंद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 770 पे तो जो लोग हमारे साथ 24 साल पुराने भी थे अब शायद एक आध बंदे को खुदा हाफिज दरमियान में किया है, वरना जो लोग 24 साल पहले थे आज भी हमारे साथ हैं, मगर वी हैव लिमिट्स, जो अगर कोई क्रॉस करेगा तो वी हैव टू से गुड बाय टू दैट पर्सन। मगर जो लोग जब किसी इदारे से निकल जाते हैं ना तो उनकी अपनी खुनस होती है, वो अपने एम्प्लॉयर को उनका बस नहीं चलता कि उसको बेलिबास करके रख दें, क्योंकि वो अपने ग्रज को या मैं आई डोंट नो मैं आपके साथ आप इसको कैसे करेंगे। इट इज अ फैक्ट डॉक्टर साहब, बाज़ोकात लोग कहीं से जब फायर हो जाते हैं या प्रमोशन नहीं उनको मिल पाती तो वो अपने ग्रजेस को डिफरेंट तरीके से या नेगेटिव वे में एक्सप्रेस करते हैं।
देखें जी, प्रमोशन का ना होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं जो लोग शायद नहीं जानते प्रोफेसर के बारे में, कि प्रोफेसर की जिंदगी में सिर्फ 2 प्रमोशन होती हैं। एक तो आप असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं 5-1 साल नौकरी के बाद, फिर 10-1 साल मजीद नौकरी के बाद आप एसोसिएट से फुल प्रोफेसर होते हैं। फुल प्रोफेसर होने के बाद रिटायरमेंट तक जो 20-25 साल है आपकी कोई प्रमोशन नहीं होती, बस उसी पोस्ट पे बैठे रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि प्रमोशन का ना होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरी अगले 20 साल तक कोई प्रमोशन होने वाली नहीं है, मैं बड़े सुकून से
बैठा। तनख्वाह तो बढ़ेगी ना,
वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगी तो और उससे ज्यादा टैक्स बढ़ जाएगा। तो बात ये है, दो तीन चीजें। पहली बात तो ये कि हमें बहुत वक्त लगेगा अपने एक माजी से जान छुड़ाने में। वो माजी ये था कि हमारे मुल्क में बकायदा मार्शल लॉ लगते रहे, कि जब एक आदमी फौजी और फौज भी पूरी नहीं सिर्फ आर्मी, लेकिन जो आर्म फोर्सेज है उसमें नेवी भी है, उसमें एयरफोर्स भी है, ठीक है, ये नहीं है कि खाली फोर्स में जो है वो ग्राउंड जो आर्मी जिसको कहते हैं वो है, लेकिन हमेशा ये होता है कि जो ग्राउंड फोर्सेस का हेड होता है वो, यानी चाहे वो सिकंदर मिर्जा साहब हों या अयूब खान साहब हों या मरहूम जियाउल हक साहब हों या जनरल मुशर्रफ साहब हों, इन लोगों ने आकर आईने पाकिस्तान को सस्पेंड किया। ये बहुत बड़ा जुल्म है किसी भी मुआशरे और किसी भी कौम के साथ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो जो उस वक्त हमारी 1 मिलियन स्ट्रांग फोर्स थी या उसके बाद आप जो 500,000 होगी, یہ ہر شخص اس چیز میں شامل ہے. یہ تو اس طرح بات ہوگی کہ اگر کوئی سیاستدان ایک غلط کام کرے تو آپ کہیں گے اس ملک کے تمام سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کی کوتاہیوں کا ذمہ دار آپ پورے ادارے کو یا پورے معاشرے کو نہیں دے سکتے. اور مجھے تو پورا یقیناً کامل ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں میچورٹی آئے گی اور جس رفتار سے آنے کی اس رفتار سے نہیں آ رہی. میں اپنا بتاؤں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں میرے زمانہ طالب علمی سے تو وہ جانتے ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور تقاریر کرتا تھا اور ماشاءاللہ مجھے کبھی ہضم نہیں ہوا تو میں تو اس کے حق میں کبھی نہیں بولتا. میں تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اس ملک میں نہ فلاح آئے گی نہ پراسپیرٹی آئے گی. لیکن اس کے بعد یہ جو 30 برس گزرے ہیں اس کے بعد سے اس میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سویلین لیڈرشپ ہے اس کا معیار بھی تو بہتر ہونا تھا. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میں جب 30 سال پہلے کی سویلین لیڈرشپ دیکھتا ہوں اور اب کی سویلین لیڈرشپ دیکھتا ہوں تو مجھے از حد انحطاط دکھتا ہے اور وہ دکھ مجھے جو ہے بہت زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک سویلین لیڈرشپ بہتر نہیں ہوگی تو رفا اور پراسپیرٹی نہیں آ سکتی. تو میں تو جو لوگ دوسرے اداروں پہ فوکس کرتے ہیں تنقید کرتے ہوئے بے شک کرتے رہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ریاست کو چلانا وہ سویلین لیڈرشپ ہے اور وہ اس حد تک اس میں یعنی انکمپیٹنس. میں کرپشن والی تو جاتا ہے کرپشن تو بہت بڑا الزام ہوتا ہے اس کو کون ثابت کرے گا لیکن انکمپیٹنس تو سامنے نظر آتی ہے. اور جو ریزلٹس ہیں پچھلے 40 سال کی ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹس کے یا ڈیموکریٹک رول کے وہ آپ یہ کہہ سکتے کہ جی ہمیں چلنے نہیں دیا تو چلنے نہیں دیا تو پھر آپ مطلب چلنے کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے. یہ کوئی ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے چلنے نہیں دیا اینڈ دیٹس مائی ایکسکیوز. تو وہ ہوتا نا کہ آپ ہم کمپٹیشن تھا ہمارا بزنس شروع کیا ہمیں کمپٹیشن نے چلنے نہیں دیا تو کوئی بزنس مین مانے گا آپ کو کہ مگر آپ کو مثلا آپ نے نیا بزنس شروع کیا اور آپ نے ایک سی ای او کو لے کے آئے اور آپ کا جو کمپٹیشن تھا انہوں نے آپ کو کمپیٹ کر کے چلنے نہیں دیا تو سی ای او کہے گا جی میں کوشش کی تھی لیکن میں نے چلنے نہیں دیتا. دیٹس نو ایکسکیوز.
مگر اس سی ای او کو بھی سپورٹ کرنے والے جو ہے نا کوئی کچھ لگنا چاہتا ہے. آپ کو میں بتاؤں اٹس اے گریڈ. جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ باہر والوں کو ہم کیا ذمہ داری دیں. آپ وہ کون سی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ ان کو پتا تھا پیپل آر خریدے جا سکتے ہیں, انہوں نے خریدے. بکنے والے جو تھے وہ میر جعفر میر صادق تھے. میر جعفر کون, میر صادق کون تھے؟ میرے اور آپ میں سے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ایک پیغام آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پروفیسر صاحب کو بتا دیں, میں کوٹ ان کوٹس میں کیونکہ میں مبالغہ نہ کر دوں, انہوں نے کہا پروفیسر صاحب کو بتا دیں کہ فل پروفیسر گریڈ ہی کس کا ہوتا ہے, اس سے آگے کیا ہم آپ کو آرمی چیف لگا دیں.
اس کے بعد تو آرمی چیف ہی ہوگا سر.
نہیں نہیں پر یہ لطیفہ اصل میں صحیح ہے. یہاں تو خیر گریڈ ہی کس نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں ہوتا ہے. میری والدہ جو تھی فل پروفیسر تھی گریڈ ہی کس کی, تو یہی بات ان سے کسی نے کہی تو اما نے ہماری کہا کہ مجھے تو یہاں ٹوٹی ہوئی گاڑی نصیب نہیں ہوتی, باقی گریڈ 21 والوں کو دیکھو جو سول اور
مگر ڈاکٹر صاحب یہ مسئلے کو اٹھایا گیا, اب مسئلے کو اٹھایا ایسے گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو آپ گاڑی اور پیٹرول دیتے ہیں مگر جو اس قوم کے معمار ہیں وہ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں اپنی تنخواہوں میں سے اور پھر اس کے علاوہ وہ بھی پے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا مسائل کی بات ہو رہی ہے, یہ کتاب میرے مجھے مس ستی ہیں انہوں نے یہ کتاب بڑی خوبصورت کتاب بھیجی ہے, اس کا ایک میں پیرائیہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس میں ہمارے ریڈیو ٹیلی ویژنز اور وی لاگرز اس وقت کے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ پاکستان اشرافیہ سے راج تک اس کتاب کا عنوان ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم کی حیثیت سے ہم اپنا نشان راہ کھو چکے. آج کے دانشور اصل مسئلہ, یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ آج کے دانشور جس میں ریڈیو بھی ہے جس میں ٹیلی ویژن بھی ہے جس میں وی لاگرز بھی ہیں, اصل مسائل کو زیر بحث لانے کی بجائے آپ کو مباحثوں میں مشغول کر دیں گے. قائد اعظم کنزرویٹر تھے, لبرل تھے, ان کی ایک بیوی تھی, ان کی چار بیویاں تھیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں جبکہ جو ایکچوئل قومیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں اشخاص امپورٹنس نہیں رکھتے بلکہ ویلیوز کو امپورٹنس دی جاتی ہے. ایک قوم کو کچھ اہم اشخاص نہیں بلکہ اس کی اقتدار جو ہیں. اور اب جو اس وقت جو پاکستان میں جو لوگ लोगों को और लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा है, जो अल्फाज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम बातचीत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन मसाइल का हम तज़करा कर रहे हैं, वो इतने की इश्यूज नहीं हैं, की इश्यूज कुछ और हैं, उनको डिस्कस करने की बजाय अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अटेंशन की डाइवर्ट करने वाली बात बड़ी आपने अजीब सी बात की। मैं आज राहुल गांधी साहब का तकरीर सुन रहा था
जी,
तो वो उन्होंने 2800 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, और तो वो लाल किले में तकरीर कर रहे थे, तो वो सुन रहा था। तो वो उसने बड़े मजे की बात, उनका देखे जो जेब कतरा होता है ना, जो आपकी जेब काटता है, तो वो क्या करता है कि वो आता है, तो उन्होंने पूछा सबसे पहला काम क्या करता है, लोगों ने कहा जी वो आपके ब्लेड निकालता है, कहता नहीं नहीं ब्लेड तो बाद में निकालेगा जेब काटने के लिए, पहला काम क्या करता है, कहता पहले काम वो आपकी तवज्जो हटाता,
तवज्जो हटाता, बिल्कुल,
कहता पहले इधर तवज्जो कर दी है, कभी उधर तवज्जो कर दी, और फिर जब आपकी तवज्जो बढ़ गई तो आपकी जेब कट गई, कहता तो यही काम भारत में हो रहा था कि जनाब उनकी तवज्जो हटा दी गई लोगों से, उनको भारत हिंदू मुस्लिम तजाद में उलझा दिया और उनकी जेब काट दी। तो ये बाकायदा उसके अपने अल्फाज
हैं, ये उनके अल्फाज हैं, बिल्कुल
बिल्कुल। तो हमारे यहाँ भी यही हो रहा है कि ये जो हमें आई थिंक सिस्टमेटिकली पाकिस्तान को धकेला जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई में। अच्छा, ये मैं जो लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल करता हूँ, तो एस्टेब्लिशमेंट से मुराद पूरी एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। आप देखेंगे कि
जिसमें हमारे तमाम ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे
अच्छा जिन लोगों ने हुकूमत नहीं चलाई होती ना, या जिन लोगों ने यानी गवर्नेंस नहीं की होती किसी खास लेवल पे, एंड दैट मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और उसमें तकरीबन तमाम सहाफी शामिल होते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि रियासत बगैर टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स के चल ही नहीं सकती। ये दुनिया में कोई ऐसी मिसाल ही नहीं है। देखिए, मैं इतना गैर मोहताज शख्स नहीं हूं कि मैं किसी रियासत का हवाला दूं, वो बहुत दूसरी वक्त था, अब बहुत दूसरा वक्त है। अब लोगों को पानी चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, खुदा ना खास्ता कैंसर हो तो कैंसर का ट्रीटमेंट चाहिए। ये इस किस्म के मुतालबे आज से 1500 साल पहले कोई शख्स नहीं करता था रियासत से। तो लिहाजा आज की जो रियासत है दैट हैज टू डिलीवर ऑन मेनी एस्पेक्ट्स। वो आप कर नहीं सकते, वो क्या कहते हैं नेक नियति भी नहीं हो सकता, वो ये नहीं कोई कर सकता कि जी मैं जाति उम्रा में बैठा हूं तो मैं यहां से चला लूंगा, मैं लंदन बैठा हूं तो वहां से चला लूंगा, मैं बनीगाला में बैठा हूं तो वहां से चला लूंगा। ये सब के सब लोग, चाहे वो चाहे गढ़ी शाहू में हो या वो क्या कहते हैं लाड़काना में हो, ये जब तक आप नहीं मानेंगे कि आपको ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स चाहिए, और हम लोग जो कनाडा में अमेरिका में रहते हैं या भारत या बर्तानिया में, आप देखेंगे कि तमाम सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है वो ही रियासत को चला रही है, चाहे आपके वो लोकल गवर्नमेंट्स हों,
आप कनाडा को देख लीजिए,
हर जगह। तो हम क्या करते हैं कि हम लोगों को इश्तियाल में दिल ले आते हैं कि जनाब ये ब्यूरोक्रेट्स को चोरी कर रहे हैं या ये सारे को चोरी कर रहे हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग इतनी मेहनत करके अपने स्किल्स डेवलप करते हैं ना, तो वो उन स्किल्स की बदौलत अपना फलाह में इजाफा जरूर करेंगे। अब ये तवक्को ना रखें कि कोई आदमी 30 साल की ब्यूरोक्रेट की सर्विस के बाद जो है वो एक कमरे के फ्लैट में जाकर रहेगा या वो उसके पास कोई वसाइल नहीं होंगे। दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हाँ, अगर चोरी कर रहे हैं तो बिला मुबालगा बिला यानी एक लम्हे की ताखीर के बगैर आप उनको सजा, लेकिन जो लोग इस काबिल हों कि वो नेशंस को बना सकें, वो अपना फ्लाव भी तो कर सकेंगे ना, दे कैन बिल्ड अ नेशन, दे कैन ऑल्सो बिल्ड सिक्योर देयर ओन फ्यूचर्स एज़ वेल। लिहाजा फोकस आप करें उनकी डिलीवरी पे कि साहब मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आपका 100 गज का मकान है या 1000 गज का मकान, मुझे गर्ज
आपकी एक बीवी है या 5 बीवी है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस।
बिल्कुल हकीकत नहीं है, आपकी एक बेटी है या 100 बेटी है, किसी की औलाद कौन है, खुदा का वास्ता इससे दूर रहो। अपने यानी इंसानों को अंदाजा नहीं कि हम कितने गैर महफूज हैं इस दुनिया में कि दूसरों के ऊपर जाके कह रहे हैं कि बीवी किसकी है बेटी किसकी, अल्लाह खुदा से पनाह मांगो और क्या कहते हैं डरो उस दिन से कि किस दिन यही सवाल आपके बच्चों से किया जाए। बस आप फोकस इस बात पर रखेंगे साहब ड्यूटी आपकी ये थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी वाटर सप्लाई की, सैनिटेशन की, हॉस्पिटल की, एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की, वो आपने काम किया और किस हद तक किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इस पर फिक्र करें। बाकी
डॉक्टर साहब जब किसी की सुनते हैं ना कि इसकी 2 या 3 बीवियां हैं, जेलसी जो होती है ना,
जेलसी तो देखते ठीक है। हमारे अब्बा ने एक, हमें एक दफा कहा कि मोमिन एक सुराख से दो मरतबा डसा नहीं जा सकता,
बेईमानी कर सकता है।
तो जो दो तीन और पांच मरतबा डसे गए।
अच्छा बाय द वे डॉक्टर साहब, कैसा फील करते होंगे, दूसरे की बात करते हैं, हालांकि मेजोरिटी आदमी अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो ये जो हमारा खित्ता है पूरा का पूरा पाकिस्तान बड़े सगीर पाको हिंद का, तो नंगी वीडियोस देखने वालों में स्टैटिस्टिक्स देखें ना तो इनके पास पूरा डेटा आता है कि इस इलाके के लोग बहुत इस तरह की फिल्में देखते हैं,
वेले बैठे हैं, उनके पास कुछ काम ही नहीं है।
ठीक
यहाँ पे लोगों के पास काम है, टाइम
ये कुछ करते हैं।
ये एक वक्त ये बड़ा किसी ने अच्छी स्टडी की थी जो मेरे पास थी, अब तो नहीं है। एक वक्त था पाकिस्तान में सिनेमा थे, ठीक है, रेगुलर थिएटर्स, हम जाते थे, सिरोज सिनेमा था पिंडी में और इस तरह के थे, मैंने जाके कई फिल्में बचपन में देखी। इसी तरह मरी में जहां मैं था तो वहां फिल्में लगती थी, दो तीन सिनेमा थे, हमने वो तमाम एंटरटेनमेंट के दरवाजे लोगों पर बंद कर दिए, ठीक है। और उसके बाद वो टेलीविजन आ गया, टेलीविजन पे सिवाय सास बहू की जंग के दूसरा कोई ड्रामा बन ही नहीं रहा, जो है ना वो लगता ही है कि पूरा पाकिस्तान में औरतों की एक बहुत बड़ी जंग चल रही है और जिसके खत्म होने के कोई चांसेस नहीं है। तो वो जून प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चे जो जवान बच्चे हैं, जो लड़के हैं ग्रोइंग बॉयज, उनको तो जब तक आप 8-10 घंटा रोजाना दौड़ाएंगे नहीं तो दे वुड हैव दिस बिल्ट अप एनर्जी, तो वो करेंगे तो लोगों को तवज्जो बटेगी, वरना तवज्जो बटने वाली नहीं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसा हैदर। डॉक्टर साहब लुक फॉरवर्ड सीइंग यू टुमारो इंशाल्लाह।
अच्छा ये दफ्तर में ही होगा?
जी यही स्टूडियो में होगा।
जबरदस्त,
मेहमान भी होंगे हमारे और 3 बजे ये इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, 2 बजे उनकी टीम हमारे यहाँ तशरीफ लाएगी, उससे पहले वो ब्रैम्पटन में एक जगह पे यानी सिटी हॉल में इन्वाइटेड हैं, 2 बजे वो हमारे पास आएंगे, 3 बजे इंशाल्लाह शो शुरू होगा, 4:45 बजे तक, 4:30-5 बजे तक ये शो चलेगा कल।
बहुत खूब,
लुक फॉरवर्ड टुमारो। डॉक्टर मुसा हैदर 21 ग्रेड में हैं, प्रोफेसर साहब हैं और अब अभी जनरली लग रहा है।
अच्छा एक लम्हा देंगी आप?
जी डॉक्टर सर, जी डॉक्टर सर।
वो मेरा 21वां ग्रेड पकड़ा गया, जेड़े फुल लगने से उन्होंने वो भी नहीं लगेंगे।
डॉक्टर तुसी एक गल दसो ना, मैं तुहानू एक बड़ी सोहनी गल दसांगी इस तों बाद।
हां जी वो
तुसी पहले दसो।
मेरा जो छोटा बेटा है वो ग्रेड 7 में
जी,
तो वो आया कहता है डैड यू नो अबाउट चैट जीपीटी? व्हाट इज चैट जीपीटी? ओह इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थिंग,
आजकल बड़ी उठी हुई है, मैं उसको प्रोग्राम करने जा रही हूँ।
हाँ जी बिल्कुल कीजिए। तो वो मैं पिछले एक हफ्ते से बाकायदा को घंटों में उस पर जो है तहकीक कर रहा हूँ, लेकिन कल रात को मैं वो इतना पावरफुल है प्रोग्राम चैट जीपीटी कि वो जो कोडिंग के लिए मैं स्टूडेंट्स हायर करता हूँ कि जो बैठ के मेरे लिए प्रोग्रामिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की डेटा साइंस में,
जी
मैंने उसको वही मसला उसको बता दिया, भाई ये मेरा मसला है,
उसने पूरा रिजॉल्व करके दे दिया होगा आपको,
उसने कोड करना शुरू कर दिया, उसने सारा कोड करके दे दिया।
मैं आपको बताती हूँ ये है न्यू चैट पे है और आप चैट ओपिनी क्या कैसे
.open.ai
या .open.ai
से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन देखिए कमाल हुआ रात को।
अच्छा इट्स नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, इट इज नॉट इंटरनेट बेस्ड, यानी आप इंटरनेट से नहीं, नहीं डॉक्टर साहब नहीं, उसमें होता है जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स किसी चीज के लेने हैं तो वो गूगल पे रहते हुए डेटा इकट्ठा करता है, ये प्रोग्राम अगर आप ये करें ना तो ये फेड, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट्स अ ब्रेन, तो ब्रेन
इट्स अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये होता है कि वो एक लफ्ज देखने के बाद ये फैसला करता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट वर्ड आफ्टर इट वुड बी दिस वर्सेस दैट, तो ये एनएलपी में चलता है। लेकिन कमाल ये हुआ रात को, मैंने इसको काम करते करते थक गया, तकरीबन 2 बज रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा भाई मुझे फैज के स्टाइल में गजल लिख दो।
हाँ उसने गजल लिख दी,
उसने फैज के स्टाइल में गजल लिख दी।
आप तो शायरों की जरूरत ही नहीं है।
नो मैं आपको बताती हूँ ये जो
शायर हो जाएंगे सर।
हाँ चैट
डॉट वो लड़का था बड़ा अच्छा शायर इंडिया में, आज से कोई 40 साल पहले, उसने खड़े होकर एक मुशायरे में पढ़ा, मुझे आज तक उसका शेर याद है, कहता कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं,
कह दो मीरो
गालिब से हम भी शेर कहते हैं वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है।
क्या बात
है। तो अब ये अब जो अगली सदी है शायरों की वो चैट जीपीटी की है।
एग्जैक्टली और इसमें माजिद भाई मैं आपको बताती हूँ, बल्कि अब जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो मोहम्मद अली मुझे कहने लगा कि इसका मतलब है कि पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग इट। आप सोचिएगा कि अगर आप उसको प्रोजेक्ट दें, असाइनमेंट दें। डॉक्टर साहब आप प्रोफेसर हैं, अब ये मुझे ये हम एक हफ्ता पहले पता चला है, तो स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट उसको देते हैं, शी प्रिपेयर्स दिस प्रोग्राम प्रिपेयर्स फुल असाइनमेंट।
जी बिल्कुल कर देते।
और अब टीचर्स फाइंड आउट कर सकेंगे इस चीज को?
हाँ नहीं, जो देखें मैं ये उन टीचर्स के लिए मसला है कि जिन्होंने वो मेमोरी वाले इम्तिहान बच्चों को दिए हैं या असाइनमेंट्स। मैं तो हमेशा से ओपन बुक एग्जाम्स लेता हूँ यूनिवर्सिटी में ना। ऐसा नहीं होता कि मैं तो एग्जाम देता हूँ, जाओ जाके लाइब्रेरी में जो किताब खोलनी है खोल लो, दिस इज योर एग्जाम। तो वो मेरे लिए तो ये चैट जीपीटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं लोगों को लाइब्रेरी फुली छोड़ देता हूँ कि जाओ तो लाइब्रेरी तुम्हारी है, तो मेरी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे स्टूडेंट्स को खुद भी वो जवाब ढूंढने पड़ेंगे, सवाल वो पूछे जाएं स्टूडेंट से जिनके जवाब अभी नहीं मिले, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं होगा।
मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास उन सवालों के जवाब हैं?
नहीं है, नहीं है, वो सवाल ही नहीं है तो जवाब कहाँ से होंगे। देखिए सबसे बड़ा काम जो होता है ना दुनिया में जो जो वो ये नहीं है जवाब ढूंढना। जवाब तो कोई भी गधा कंप्यूटर ढूंढ सकता है, असल काम होता है सवाल ढूंढना।
बिल्कुल सही कहा, सवाल ढूंढना सबसे मुश्किल है। मगर बहुत से लोग जब सवाल करते हैं तो लोगों को नापसंद भी तो होता है।
हाँ नहीं वो तो वो दूसरा सवाल करते हैं ना, भैया जरा 5,000 रुपए दे।
बहुत शुक्रिया।
सवाल और तकाजे का फर्क नहीं जानता।
आप भी कुछ कहना चाहते हैं?
आपने बहुत कमाल की बात की। हाँ डॉक्टर साहब मैं बताती हूँ कि जुबान और अल्फाज में बाज़ोकात एक जैसे हमारे बहुत अच्छे सतेंद्र पाल जी एक वाक्या सुनाया करते थे, कहते कि वो एक घर था, ऊपर सिख फैमिली रहती थी, पाकिस्तानी फैमिली उनके किराएदार आए, तो वो नए नए पाकिस्तान से आए थे, तो वो ऊपर आए तो कहते जी इस्त्री दे दो। अब कहते हैं जी उस सरदार जी को तो बड़ा गुस्सा चढ़ा, शर्म नहीं आंदी की चाहिदा है? उन्हें कहा जी इस्त्री दे दियो। उन्हें कहा तेनू मतलब मेरी अपनी इस्त्री है, तेरी इस्त्री कहाँ है? तो उसने सर उसको एक्सप्लेन किया। जी डॉक्टर आप बताइए।
नहीं बिल्कुल इस्त्री यहाँ जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में इस्त्री, आयरन जिसको कहते, वहाँ भारत में उसका मुराद बीवी में होता है,
बीवी होता है या बेगम। ठीक है अच्छा अब वो हमारे एक बहुत प्यारे बड़े पढ़ा लिखा ताहिर साहब हैं, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। कल उनका फोन आया, कहते हम एक जगह बात कर रहे थे तो आपके बारे में जिक्र आ गया, तो वहाँ हमारे इंडियन भाई बहन भी बैठे हुए थे, तो उनमें से कहता यार प्रोग्राम तो उनका सुनते पर वो गालियां बहुत निकालती हैं। उन्होंने कहा यार वो तो कोई गाली नहीं निकलती, कहता रोज वो कहते ने पंबल भूसे च पाता। पंबल वो सुना है कि इंडियन में इट्स अ गाली। हाँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैंने तो कभी गाली दी नहीं है, हम तो कहते हैं ना उल्लू का, आगे समझता है समझने वाला पता नहीं क्या गाली दे रहे हैं, तो हम कहते हैं उल्लू का चरखा। ठीक है तो बम्बल भूस से फिर उन्होंने मुझे एग्जांपल दी कि यार वो गालियां बहुत देती हैं, तो उन्होंने कहा गालियां तो उनको मैंने कभी देते नहीं सुना। तो कहने लगा आए दिन तो कहते ना बम्बल भूस से पाता, वो है इंडियन जबान में गाली।
गालियों में मुझे याद आया एक साहब थे तो जाली पीर बन गए, तो उन्होंने अपना खोल लिया मजार, वहां लोग आए चढ़ावे चढ़ाए पैसे दें, उनके तो बिजनेस चल पड़ा। तो उनको जानता था एक आदमी पहले से, ये जो पीर बने हुए थे वो आया, उन्होंने देखा कि ये क्या मजाक से बनाया, उसने थप्पड़ लगाया उसको, कह रहा सीधा हो जाए क्या लोगों को गुमराह कर रहा है, मारा पीटा गालियां दी और चला गया। अब ये जो पीर बना हुआ था इसके सामने उसके सारे चेले बैठे हुए थे, तो ये तो बड़ा शर्मिंदा हुआ यार मुझे मारपीट के मेरे क्या। अचानक उसको ख्याल आया, वो जो ही बंदा मारपीट को गया तो लुक के इनको कहता है वो पिछाड़े हैं कौन सी, तो चेले कहते कौन है, वो मेरे पीरो मुर्शिद। तो वो कहता है कि ये मेरे पीरो मुर्शिद है, उसने जान छुड़ाई इस तरह।
ये होती है बात बहुत बिल्कुल डॉक्टर साहब। और यहाँ से हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मोहब्बत को की तरवीज कीजिएगा, छोटी छोटी बातों पे हंसते बोलते रहिएगा। और डॉक्टर साहब शुक्र है कि जर्नलों की तरह बात नहीं करते, मगर हैं आप नेक्स्ट टू जर्नल।
नहीं
आपने कहा ना नेक्स्ट जनरेशन, आपने सही कहा कि 21वीं ग्रेड के बाद और कुछ नहीं चाहिए, जनरली बनेंगे।
आई लव यू डॉक्टर मुसाहद साहब, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब की बहुत खूबसूरत आर्टिकल नेशनल पोस्ट यानी पोस्ट की जो इतनी भी हैं साइट उनके ऊपर जाते हैं, रियल स्टेट से मुतल्लिक बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन है। वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं या देख रहे हैं चीज़ों को, आप इनको फॉलो करना शुरू करें डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर को। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच,
बहुत शुक्रिया जी। कल मुलाकात होगी
इंशाल्लाह, मुलाकात होगी कल। जब हमने डॉक्टर साहब ने कहा तो आफ्ताब इकबाल साहब टुमारो ही इज कमिंग टू आवर स्टूडियो और कसौटी के नाम से ये प्रोग्राम करेंगे। साहब कसौटी का प्रोग्राम क्या है, आपको याद ही होगा 21 सवालों का जवाब, ये 5 सवालों में 7 सवालों में जवाब लेना, तो कसौटी का प्रोग्राम जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब की समझ की बातें भी आपकी नज़र से गुजरेंगी। वेरी वेल एजुकेटेड मैन जो कि मसाइल को मुख्तलिफ तरीके से मसाइल से आगही देते हैं आपको। आफ्ताब इकबाल साहब से कल 3 बजे वो यहाँ पे प्रोग्राम को शुरू करेंगे, उनकी टीम डॉक्टर रूबा होंगी, उनके बाकी साथी होंगे, नासिर शाह साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। कल शाम को 3 बजे ये प्रोग्राम, तकरीबन 50 के करीब गेस्ट भी होंगे। इस ओनली एज पर इनविटेशन, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, यू विल बी माई गेस्ट। ठीक, आर गेस्ट 770 के गेस्ट, ई आवाज की टीम के गेस्ट आप हो सकते हैं, बट यू हैव टू कॉल बिफोर टाइम ताकि हम सीट को रख सकें। माजी जमाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, टॉप ऑफ द आवर, बस टॉप ऑफ द आवर, 25 मिनट नीचे चले गए बट टॉप ऑफ द आवर।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
आतिशबाजी के नए कानून के तहत ब्रैम्पटन में आतिशबाजी के इस्तेमाल, खरीदारी, खारिज होने वाले मादा, डिस्प्ले या फरोख पर सख्ती से पाबंदी है। इसमें तमाम चमकने वाली रोमन मोमबत्तियां, रॉकेट, ग्राउंड स्पिनर्स, फवारे, उड़ने वाले लालटेन, बम धमाके वगैरह शामिल हैं। अमल न करने पर आपको 500 से 1 लाख डॉलर तक फाइन हो सकता है। ब्रैम्पटन के रहायशी, नए साल की शाम, कैनेडा डे या दिवाली की आतिशबाजी शहर के ज़ेर क़यादत जगहों पर एंजॉय कर सकते हैं। मजीद जानने के लिए विजिट कीजिए brampton.ca/fireworks।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
नया साल मनाएं डाउनटाउन ब्रैम्पटन में फ्री कॉन्सर्ट के साथ, रेडियो और टीवी होस्ट जोजी डाय की मेजबानी, परफॉर्मेंस बाय डीजे रोशनी, जेन्स पार्टी एंड जूनो अवार्ड विनर्स द बीचेस, काउंटडाउन टू मिडनाइट, जबरदस्त फायरवर्क्स डिस्प्ले। हमारे साथ जश्न मनाएं गार्डन स्क्वायर ब्रैम्पटन में जो शुरू होगा रात 9 बजे सैटरडे दिसंबर 31st। मजीद मालूम के लिए विजिट brampton.ca/newyearseve।
ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਸਜਦਾ।
सोडी फर्नीचर दी मैनेजमेंट वालों तय दिल तो धन्यवाद कीता जांदा है अपने कस्टमर्स दा, जिन्हां ने बॉक्सिंग डे सेल ते फर्नीचर खरीद के वधिया डील्स दा फायदा उठाया। जे किसे कारण तुसी इस सेल नु मिस कर दिता है, तो हुण पूरा हफ्ता ओही डील्स देण दा वादा कर रहे ने सोडी फर्नीचर। 3 साल लई 9 ब्याज, 142 कैनेडी रोड साउथ, कॉल 905-874-7171।
पेयर एंड मके मेंस वियर, 3 एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द ब्रांड्स, fit, quality and value. Only South Asian owned men's custom suiting shirting company in Canada. Fully vertical operation direct from factory to customer. Quality comparable to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss. 100% Italian wool suit from $279.99. 100% Egyptian cotton shirts from $29.99. 100% Italian wool trouser from $69.99. Kashmir wool overcoats, long sleeves polos, merino wool sweaters. 1535 Mayside Drive, Unit 19 and 20 in Mississauga. 905-670-3388. SpareandMcKay.com.
Teletime Electronics LEDs और Home Appliances की Hottest और Branded Range के साथ 0% Finance Guarantee on Lowest Prices और Free Delivery in GTA तो इंतजार कैसा? अभी विजिट करें Teletime Brampton 280 Rutherford Road या Springdale Square Shopping Center या Etobicoke 1770 Albion Road या 9909 Markham Road مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666 ٹیلی ٹائم الیکٹرونکس
السلام علیکم میں شبہات علی فرام میگا منی ایکسچینج ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں ہمارا فون نمبر ہے 905-279-4754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 Kothra Road, Mississauga.
Asian Food Central दिया सारिया ही locations ते 16 दिसंबर तो 2 जनवरी तक Christmas अते New Year Grocery Sale लग चुकी है 300 ग्राम खालसा पनीर $3.99 almonds $4.99 per pound deep tandoori garlic naan $2.79 each 216 tea bags वाला tea India pack $8.99 दा 3.5 pounds सवेरा देसी क्यो $23.99 दा अते बहुत सारिया in store deals order your grocery online at afcgrocery.com some conditions apply 416-740-3262 Asian Food Center वल्लो happy
ہالیڈیز چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ بتائیے نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان اوپر سے دہشت گردی نے پھر ایک بار زور پکڑ لیا ہے ویری سیڈ پاکستان کی ٹیم جو ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ مقابلہ کہتے ہیں ریکارڈ ہی توڑ دیا ڈیڈ یو سی دیٹ کیا ریکارڈ توڑا 145 ایئرز آف کرکٹ ہسٹری
اچھا
پاکستان نے آج ریکارڈ توڑ دیا پر ریکارڈ توڑنے میں جب ہم ماہر ہیں کراچی میں کھیلے جائے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے ٹاس جیتا ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کو پہلے عبداللہ شفیق کے غیر ذمہ دارانہ شاٹ کی وجہ سے پہلا نقصان اٹھانا پڑا عبداللہ شفیق سٹیمپ آؤٹ ہو کر اعجاز پٹیل کو وکٹ دی اور پویلین کی طرف واپس لوٹ گئے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ہم یا کسی کی غلطی سے سیکھتے ہیں یا ہم کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کے سیکھتے ہیں اب وہ اوپنر دو تھے نا تو دوسرا بندہ اس نے پہلے والے سے اعجاز شفیق سے سبق نہ سیکھا نا دوسرا تھا شان مسعود شان مسعود نے بھی ایگزیکٹلی وہی غلطی کی جو شفیق نے کی تھی
چھٹی ہو گئی
اور غیر ضروری طور پر قدموں کا استعمال کرتے ہوئے مائیکل بریسویل کی گیند پر سٹیمپ ہو کر پویلین 142 ایئرز میں یہ پہلا ملک ہے جس کے دو بندے
سٹیمپ ہو گئے
شروع میں ہی سٹیمپ ہوتے ہیں اور بیک ٹو پویلین ان دونوں کھلاڑیوں کی سر آؤٹ ہونے کے نتیجے میں پاکستان نے ٹیسٹ آف کورس صاحب اوپر ہی نہیں نیچے سے بھی کام چلنا چاہیے نا کرکٹ کا بدترین ریکارڈ اپنے نام کر لیا یہ ٹیسٹ کرکٹ کی 145 سالہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی ٹیم کے آؤٹ ہونے والے ابتدائی اوپنرز سٹیمپ ہو کر پویلین لوٹے آج تک کھیل کی طویل تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو پاکستان کے کھیل ہو سکتا ہے وہ ڈپریسڈ
ہو ہمارا نام ہوگا
ہو سکتا ہے وہ ڈپریسڈ ہو
نہیں
کہ رمیز راجا کو فور نو ریزن نکال کے رجت شیٹی کو لے آئے تو وہ آؤٹ ہو گئے ایک گیت کی طرف لے کے چلتی ہوں آپ اس گیت کو انجوائے یہ صاحب ایک پنجابی کا گیت میں آپ کے ساتھ
سریندر کور
سریندر کور جی بہت خوبصورت ان کا ایک اور گیت بھی ہے وہ ہے لاہور کے دروازے 12 دروازے اور ان دروازوں میں سے کیسے انٹر بڑا پیارا سریندر کور جی کا یہ گیت ہے انہ اکھیاں چ پاواں کیویں کجلاتے اکھیاں چ تو وستا تھوڑا سا سناؤں گی انجوائے
چپاواں کیویں کجلاوے
अखियां च तू बसदा इन अखियां पावा किवें कजलावे अखियां च तू बसदा भुलेखा मैनू पैदा वे हासियां च तू हसदा जदों हसदी भुलेखा मैनू पैदा वे हासियां च तू
अज खुशियां दा हो गया सवेरा अखियां च तू बसदा साहब आंखों में तुम बसता इंसान बाज़ोकात अपनी जिंदगी की कहानियों में खोया रहता है। जमाइमा जमाइमा गोल्ड स्मिथ के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने एक फिल्म बनाई है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, ठीक है, ये फिल्म है इनकी और इसमें पाकिस्तानी लड़की का किरदार अदा किया है सज्जल अली ने। सज्जल अली ने ये इसमें शबाना आज़मी भी इस फिल्म में है और व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट यानी मोहब्बत का इससे क्या ताल्लुक है। इसमें एक जो लड़का दिखाया है वो ब्रिटिश दिखाया है, लड़की जो है वो पाकिस्तान, दोनों के दरमियान शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जिंदगी गुजरती है और फिर वो लड़की का वो कहते हैं फिल्म का जो लास्ट पार्ट है। ये फिल्म इन्होंने बॉलीवुड के जो फिल्म साज हैं शेखर कपूर उनके साथ मिलके जमाइमा ने बनाई है। जैसा मैंने आपसे कहा सज्जल अली रोल प्ले कर रही हैं, इसकी मोस्ट ऑफ द शूटिंग इंग्लैंड में हुई है और जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने इसमें अपना पैसा लगाया। इसकी कहानी भी जमाइमा ने खुद लिखी है और रिवर्स कर दिया ना,
रिवर्स कर दिया,
शी रिवर्स्ड इट। और इसमें सज्जल अली, सज्जल अली की भी अगर आपको याद होगा 2020 में शादी हुई थी अहद रजा मीर अली, जो रजा मीर हैं पाकिस्तान के एक्टर, उनके बेटे अहद रजा मीर से शादी हुई थी। फिर उसके बाद बहुत सारी अफवाहें भी आई कि इन दोनों के दरमियान डाइवोर्स हो गई है, मगर दोनों ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। सज्जल ने बाकायदा इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपनी शादी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा मोहब्बत बहुत खूबसूरत रिश्ता है, शादी जो हुई ایک بہترین رشتہ ہے شادی کا, مگر اگر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو اچھے طریقے سے خدا حافظ کہہ کے الگ ہو جانا چاہیے, بلکہ خود اپنی فیملی کو بتا دینا چاہیے. اور اس فلم میں واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ جو فلم ہے جمائما کی, اس میں بھی وہ کہتے ہیں فلم کے لاسٹ پارٹ میں جب اس کو وہ لڑکی بتاتی ہے کہ یو نو وی کین ناٹ لیو ٹوگیدر, حالانکہ محبت ہمیں ہے مگر شادی کا رشتہ ہمارا آپس میں نہیں چل سکتا, تو وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ پارٹ اس کا بڑا خوبصورت ہے. سجل نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ برطانیہ کا لڑکا ہے جو کہ پاکستان کی لڑکی سے شادی کرتی ہے, اور سجل نے کہا ہے کہ میں جو ریپرزینٹ کر رہی ہوں پاکستان اور انڈیا دونوں کی لڑکیوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. تو بہرحال شادی کی ناکامی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر شادی ہوتی ہے ٹرائی کیجئے گا, مگر اگر نہیں چل سکتی تو بہتر ہے کہ کنفیس کرنے کے بعد عزت کے ساتھ پیار کے ساتھ بجائے اس کے کہ کورٹ کچہری, ہمارے ہاں تو کورٹ کچہریاں ہی ہوتی ہیں, اس کے بعد جہیز واپس کر دو, سونا واپس کر دو, زندگی ختم ہو گئی تو پیچھے پیسہ اور جہیز کا کیا کرنا. اسٹے ٹیونڈ. ایک ریکویسٹ میں آپ سے کیا کرتی ہوتی ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ان تمام لوگوں کو ضرور شامل رکھیں جو بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے. ظاہر ہے تو یہ دنیا ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں ان کو زندگی, صحت اور تندرستی, جو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آمین سم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین سم آمین. اور ہمیں اس قابل کر سکے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی سہولت کار ہوں, دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکے. وی گاٹ ٹو گو, مگر وہ کہتے ہیں اچھا کر دریا میں ڈالتے چلے جاؤ. اور جو لوگ آج دنیا میں نے ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجئے سب کے ساتھ, مظفر علی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے, جانے والوں کی اللہ تعالیٰ منزلوں کو آسان کرے, ان کی قبروں کو روشن اور کشادہ کرے, مجھے اور آپ کو اچھے کے لیے مختص کرے. آمین. وہ مجھے آخری اس کی بلکہ زیادہ اچھے لگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, چلا مجھے سیدھے رستے پر, صراط الذین راہ ان لوگوں کی, انمتا انعام ہوا جن پر آپ کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے رستے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. لو یو آل. اجازت دیجئے گا. کل ناصر شاہ صاحب کا بہت شکریہ, ان کی ٹیم کا بہت شکریہ. خبرہار سے آفتاب صاحب 3 بجے پروگرام کو شروع کریں گے, اور کسوٹی کا یہ پروگرام ہوگا جس میں ڈاکٹر عروبہ ہوں گی, جناب آفتاب صاحب ہوں گے, ناصر شاہ صاحب ہوں گے, اور ان کی ٹیم ہوگی یہاں پہ موجود. ابھی مجھے اجازت دیجئے گا, انشاءاللہ کل ملنے کی آس کے ساتھ. آج اللہ حافظ.
کھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و حوث نے مار ڈالا ہے. متائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر, سکون قلب کی دولت حوث کی بھینٹ چڑھوا کر, لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دل دل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kilohertz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
Oh. ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو اثر میں دعا تو کجا من کجا میرا ہر سانس تو خونی چھوڑے میرا میرا ہر سانس تو خونی چھوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں تو سخی میں گدا تو کجا من کجا تو سخی میں گدا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا जा मन को जा तू जजा मेरा जा तू कुजा मन को जा दूरियां सामने से जो हटने लगी दूरियां सामने से जो हटने लगी जालियों से निगाहें लिपटने लगी जालियों